हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य सिंघानिया इस वक्त हॉस्पिटल में थे और उनके पैर की सर्जरी हो चुकी थी। कृषा ने उनके पैर की गोली मारी थी, डॉक्टर ने गोली निकाल दी थी। वो पूरी रात आराम कर रहे थे। सुबह के लगभग 7 बजे के करीब अमृता उनके पास ब्रेकफास्ट लेकर गईं। आदित्य सिंघानिया अपने बिस्तर पर बैठे बस एक दिशा में देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था जब कृषा ने उन पर गोली मारी थी। अमृता उनकी मनस्थिति समझ सकती थी। वो उनके पास बैठी और गहरी सांस लेते हुए कहा, प्यार ऐसा ही होता है, वो बस बगावत करना जानता है। उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। समझ आता है तो सिर्फ इतना कि कैसे बस अपने प्यार के साथ रहना है। समझ नहीं आता क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो उसने मेरा साथ छोड़कर उसका हाथ पकड़ा, आदित्य ने अमृता की तरफ देखकर कहा। 2.5 साल तक वो मेरे साथ रही थी और उस टाइम में मैंने एक बार भी उससे चिल्लाकर बात तक नहीं की, जबकि हम अच्छे से जानते थे कि वो ट्रेनिंग सही से नहीं कर रही है। मैंने बस सिर्फ एक चीज़ के लिए उसे धमकाया था और वो था युग के पास न जाने के लिए। मेरा दिल जानता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे शांतनु की पहली और आखिरी निशानी है वो। मिस्टर सिंघानिया, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कृषा से प्यार करना है या नफ़रत, अमृता बोली। आदित्य की बातों से यही समझ आ रहा था कि वो इस वक्त कन्फ्यूज़ है। कृषा की हरकतों की वजह से वो गुस्सा ज़रूर थे, लेकिन एक बात तय थी कि वो उससे नफ़रत नहीं कर सकते थे। आदित्य ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो कुछ पल सोचने के बाद अमृता की तरफ देखकर बोले, मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन युग को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? वो हर्षवर्धन राणा का पोता है, जो किसी ज़माने में आपके लिए जान से भी बढ़कर हुआ करते थे, अमृता ने जवाब दिया। आपको याद हो तो पिछली बार भी गलती आप ही की तरफ से हुई थी। कृतिका मेरी बहन थी, इसका मतलब ये नहीं मैं उसका फेवर करूँगी। शांतनु और हरलीन इंगेज थे और वो उनके बीच में आई थी, ये बात सच है। वहीं से सब बिगड़ना शुरू हुआ था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक और गलती क्यों कर रहे हो? कृषा इस दुनिया के लिए नहीं बनी हुई है, वो बहुत इनोसेंट है, और प्लीज़ उसकी इस इनोसेंस को ज़िंदा रहने दीजिए। अगर आपको अपनी लेगेसी बचाकर रखनी है तो उसे युग के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए मिस्टर सिंघानिया। अमृता काफ़ी अच्छे से मिस्टर आदित्य सिंघानिया को समझा रही थी और उनकी बातों ने आदित्य को सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया था। आदित्य के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और उन्होंने धीरे से कहा, क्या वो मुझे माफ़ करेगी? मैंने युग पर हमला करवाया था। और क्या युग मुझे माफ़ करेगा? मैंने 2.5 साल उन दोनों को अलग रखा था। आदित्य सिंघानिया अपनी तरफ से सब भूलने को तैयार थे। ये देखकर अमृता के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो हाँ में सिर हिलाकर बोली, वो ज़रूर माफ़ करेंगे, लेकिन आप सच्चे दिल से कोशिश करके देखिएगा। अभी के लिए उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, हम लंदन चलकर सब सही करेंगे। मिस्टर हर्षवर्धन राणा और हरलीन भी वहीं पर हैं और इसमें वही आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पिछली बार की तरह कोई शर्त मत रखिएगा। आदित्य ने अमृता की बात पर हामी भरी। अमृता भी ये देखकर खुश थी कि काफ़ी टाइम बाद ही सही लेकिन सब ठीक होने जा रहा था। तुम डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा लो, हम लंदन के लिए निकलते हैं, आदित्य सिंघानिया ने कहा। अमृता ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहाँ से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद आदित्य ने खुद से कहा, अमृता सही कह रही है, अब मुझे अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। इसके चलते मैं कृषा को हर्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी के ज़्यादा दिन बचे होंगे और इन बचे कुछ सालों में मुझे कृषा की नफ़रत के साथ नहीं जीना है। दूसरी तरफ सुबह हो जाने के बाद भी युग सोया हुआ था। कृषा की आँख खुल गई थी। उसने देखा युग अभी तक पेट के बल सोया हुआ था और उसकी आँखें बंद थीं। उसे देखकर कृषा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। कृषा उठी और युग के पास गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और युग के नोज़ पर हल्का सा किस कर दिया। उठाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही बुरा है कृष, युग ने बंद आँखों से कहा। तुम जाग रहे थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तुम्हारा रोज़ का होता है कि तुम आँखें बंद करके लेटे रहते हो। मुझे ये लगता है कि तुम सो रहे हो। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती, कृषा ने मुँह बनाकर कहा और वो युग से दूर जाने लगी। तभी युग ने हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। युग के एक्शंस काफ़ी फास्ट थे और कृषा स्लिप होकर उसके ऊपर आ गई। युग ने करवट बदल ली थी और कृषा उसके ऊपर सोई हुई थी। कृषा ने इधर उधर देखते हुए कहा, छोड़ो युग, हॉस्पिटल है, कोई आ जाएगा। मेरी परमिशन के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता, युग ने जवाब दिया और फिर कृषा को कमर से पकड़कर नीचे लिटा दिया। युग उसके ऊपर आ चुका था। युग काफी टाइम बाद कृषा के करीब आया था और उसके इस तरह इतने करीब आने पर कृषा के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो बस एक टक युग के चेहरे को देख रही थी। युग ने कृषा की तेज सांसों को नोटिस किया और फिर ईविल स्माइल करते हुए कहा, इतने में ही तुम्हारा ये हाल है, तो जब मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा तो कृष तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं, कृषा हड़बड़ाकर बोल रही थी कि तभी युग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। कृषा और युग लगभग 2.5 साल बाद एक दूसरे के इतना करीब आए थे तो युग उसको काफी पेशेंटली किस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बीते 2.5 सालों की कसर उस एक किस से पूरी कर रहा हो। युग पूरी तरह कृषा में खोया हुआ था, तभी कमरे का दरवाजा खुला। वो मीरा थी और उसने उन दोनों को इस तरह देखकर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और तेज आवाज में बोली, अरे बापरे, यहां तो कुछ और ही चल रहा है। हमें लगा आप बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे क्योंकि आप दोनों को ही चोट लगी थी, लेकिन यहां तो। अचानक मीरा के बीच में आने की वजह से युग कृषा से अलग हो गया। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। कृषा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था हॉस्पिटल है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी मर्जी के बिना यहां कोई नहीं आ सकता। तुम्हारी जिद के आगे मेरी मर्जी चलती ही कहां है कृष, अगर चलती तो ये लड़की आज हम दोनों के बीच में आना तो छोड़ो इस दुनिया में भी नहीं मिलती, युग ने गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। मीरा के अचानक आ जाने की वजह से युग को कृषा से अलग होना पड़ा। मीरा का चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था। उतने में मलिक भी आ गया था। कृषा युग के बेड पर थी इसलिए मलिक को समझते देर नहीं लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने इसे कहा था कि कॉल करने के बाद ही जाना है, पर यह मेरी बात नहीं मान रही थी। अब हमें समझ आ गया कि आप पहले कॉल करने का क्यों बोल रहे थे, मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर युग और कृषा की तरफ देखने लगी जो अब दूर हो गए थे। उन दोनों के अलग होते ही मीरा कृषा के पास आते हुए बोली, आप ठीक तो है ना, हम बहुत डर, मीरा बोलते हुए रुक गई। उसने युग के चेहरे की तरफ देखा जिस पर गहरे गुस्से के भाव थे। मीरा को इस वक्त उससे डर लगने लगा। तभी युग जोर से चिल्लाने कर बोला, गेट लॉस्ट, अगले 4 घंटे तक मुझे इस रूम में कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, मलिक कैमराज ऑफ करवा देना। 4 घंटे क्यों, आप क्या करने वाले हो 4 घंटे तक, मीरा ने मासूमियत से पूछा, जिस पर युग फिर से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगा।
मलिक ने जल्दी से मीरा को पकड़ा और वहां से बाहर ले गया। मलिक ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया था और कमरे के कैमरा भी बंद करवा दिए थे। वैसे भी उसके लिए ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उनके जाते ही कृषा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वो इधर उधर देखने लगी। सुबह के वक्त युग और कृषा हॉस्पिटल के रूम में थे। इतने टाइम बाद युग कृषा के करीब आया था और उसे काफी पेशेंटली किस कर रहा था। युग और कृषा अपने लम्हे में खोए हुए थे कि तभी अचानक कमरे में मीरा आ गई और उसकी वजह से युग को कृषा से अलग होना पड़ा। युग ने मलिक को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि अगले 4 घंटे तक उसके कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। इसी के साथ उसने उन सबको रूम से निकाल दिया था। उनके जाते ही युग ने रूम अंदर से बंद किया और फिर कृषा की तरफ देखा। इस वक्त कृषा का चेहरा लाल हो रहा था और वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देख रही थी। मेरी तरफ देखो कृष, युग ने तेज आवाज में कहा तो कृषा ने उसकी तरफ देखा। युग धीमे कदमों से उसके पास आ रहा था। कृषा के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फटकर बाहर निकल आएगा। युग के पास आते ही कृषा ने धीरे से कहा, अभी नहीं युग, एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और ना ही रेडी। कृषा की बात सुनकर युग ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम किस चीज के लिए रेडी नहीं हो? एक सेकेंड, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं? कमन कृष, इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें किस किया क्योंकि तुम मेरे करीब आई थी और मुझे किस करने का मन कर रहा था। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, मुझे अच्छे से नींद लेनी थी इस वजह से मैंने सबको बाहर भेजा था। अच्छा, मुझे लगा वो। कृषा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो कुछ और ही समझ रही थी और अब उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कृषा ने युग की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है तुम सो जाओ, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी। अपनी बात कहकर कृषा दूसरी तरफ जाने लगी। तभी युग ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे करीब रहना है, तो मेरे पास होती हो तो मुझे नींद सही से आती है, तो तुम मेरे साथ रहोगी। युग बेड पर जाकर लेट गया और कृषा उसके पास में सोई हुई थी। युग का सिर कृषा के कंधे पर टिका हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। कृषा युग की बैग को सहला रही थी। अचानक वो युग से बोली, लेकिन मुझे तुम्हारे करीब आना है युग, तुम्हारी 50% नाराजगी मैं बाद में दूर करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। कृषा की बात सुनकर युग ने आंखें खोली और कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, अभी नहीं, पहले मुझे उस शख्स को सजा देनी है जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ इस हॉस्पिटल में फंस गए हैं। तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। मैं तब तक तुम्हारी खरीद नहीं आऊंगा जब तक हमें दूर करने वाले इंसान को उसके किए की सजा ना दे दूं। युग का मतलब यहाँ आदित्य सिन्हानिया से था। कृषा ने गुस्से में आदित्य को गोली जरूर मारी थी, लेकिन अब उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था। कृषा युग को समझाते हुए कहा, एक बार प्यार से बात करके देखते हैं, प्लीज मेरे लिए तुम ये कर लो, अगर वो नहीं माने तो आई प्रॉमिस मैं कभी उनके सामने जाने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हें ये उल्टी सीधी डिमांड्स मुझसे ही क्यों रखनी होती हैं? ये बात अपने दादू को भी तो बोल सकती थी ना, युग ने आइज रोल करके कहा। क्योंकि मेरा तुम पर हक है और मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी डिमांड कर सकती हूँ और तुम्हें पूरी भी करनी होगी युगराना, कृषा ने मुस्कुराकर कहा। अचानक कृषा अपनी जगह से उठी और युग के ऊपर आकर लेट गई। युग कुछ कहता उससे पहले कृषा ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे काफी इंटेंसिटी से किस कर रही थी। किस करते हुए कृषा युग से अलग हुई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे वो सब जानना है जिसके बारे में आज तक तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। हमारे परिवारों के बीच में आखिर इस दुश्मनी का राज क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है युग, तुम मुझे मना नहीं करोगे। तुम्हें सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कृष, कि दुश्मनी की शुरुआत तुम्हारी वजह से ही हुई थी, युग ने भौहें उठाकर कहा। कृषा के लिए ये बात पहली बार सामने आई थी कि राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली के बीच की दुश्मनी की शुरुआत कृषा की वजह से हुई थी। वो हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। तभी युग ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, दुश्मनी की जंग तुम हो कृष, तो हो सकता है तुम्हारी वजह से ये सब खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे दादू कुछ भी खत्म करने के मूड में है। और इस बार तो मैं भी कुछ खत्म नहीं करना चाहता, उनकी गलतियों को मैं बहुत नज़रअंदाज कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं, अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। युग का मूड काफी अच्छा था, लेकिन बीच में पुरानी बातें याद आने की वजह से उसका मूड खराब हो चुका था। उसने कृषा की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, मुझे अकेले रहना है। तुम्हारी बाहों में सुकून मिल रहा था, लेकिन अब तुम्हारे सवालों से मेरा दिमाग फिर से परेशान हो गया है। कृषा ने युग की बात पर हामी भरी और कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त उसका दिमाग भी काफी अशांत था। वो उलझन में थी और अभी भी इसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली के बीच की दुश्मनी का बीज पैदा हुआ। इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य दादू से तो किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हर्ष दादू भी ऐसा करेंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर वो मेरी वजह से सब शुरू हुआ था तो बुआ और दादू मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैं तो उस वक्त इतनी छोटी थी, फिर मेरी वजह से कैसे सब शुरू हो सकता है? कृषा ने अपने मन में कहा। उसके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे थे और जिसका जवाब सिर्फ युग दे सकता था, लेकिन उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। कृषा सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर आई। वो कैंटीन एरिया की तरफ जा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह पकड़ा और एक कमरे में खींच लिया। कृषा उससे अलग होने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन जिस शख्स ने उसका मुंह पकड़ा था उसके हाथ में एक रुमाल था और रुमाल में क्लोरोफॉर्म होने की वजह से कुछ ही देर में कृषा बेहोश हो चुकी थी।